नमस्करोमि भो मित्रगणाः, प्रति सप्ताहस्य प्रथां पालयामि। रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे कौशलं न्यासस्य कृते भवतः प्रति पठामि संस्कृतम् इत्यस्य कार्यक्रमस्य अद्यतनपाठस्य प्रस्तुतिं करोमि। अर्थात् हे मित्रगण, नमस्कार है, और प्रति सप्ताह की प्रथा का मैं पालन कर रही हूँ। रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच से कौशलम न्यास के लिए आप सबों के प्रति पठामी संस्कृतम कार्यक्रम की अद्यतन पाठ की प्रस्तुति अब मैं कर रही हूँ। तो इस प्रकार ये अर्थ समझना बहुत ही सरल है, और वैसे भी मैं थोड़े थोड़े दो तीन वाक्यों के पश्चात अर्थ बता दिया करूँगी, ताकि तुम लोगों को समझने में सुविधा हो। अद्य अहम् भवतः प्रति पातंजल योगसूत्राणि इत्यस्य ग्रंथस्य संक्षिप्तं परिचयं ददामि। पतंजलि मुनिः अस्य ग्रंथस्य रचयिता अस्ति। सः योग इत्यस्य विषयस्य विवेचनम् अकरोत्। अतएव ग्रंथस्य नाम पातंजल योगसूत्राणि समुचितं भवति। पतंजलि मुनिः एनं ग्रंथं प्रायशः 3000 वर्षाणि पूर्वं लिखितवान्। अर्थात् आज मैं आप सबों के प्रति पतंजल योग सूत्राणि इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय देती हूँ। पतंजलि मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की है, और उनका योग विषय का विवेचन इस ग्रंथ में है। अतएव ग्रंथ का नाम पातंजल योग सूत्राणि यह समुचित है, क्योंकि पतंजलि मुनि के द्वारा लिखा गया इसलिए पातंजल, और योग विषय की विवेचना करता हुआ यह ग्रंथ है तो योग सूत्र। तो इस प्रकार इसका यह पातंजल योग सूत्र ये हिंदी नामकरण हुआ, और पातंजल योग सूत्राणि बहुवचन ये संस्कृत नामकरण हुआ, तो यह नामकरण समुचित ही है, योग्य ही है। पतंजलि मुनि ने इस ग्रंथ की रचना प्रायः 3000 वर्ष पूर्व किसी समय की थी।
यहाँ एनम ग्रंथम यह द्वितीय अर्थात कर्म का रूप हमने लगाया है। और हाँ मित्रों, यहाँ दो शब्दों के प्रयोग के विषय में मैं कुछ बता देना चाहती हूँ। एक शब्द है भवतः प्रति। तुम्हें पता है कि संस्कृत में आदर दिखाने के लिए भवान शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसका बहुवचन होता है भवन्तः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा, और भवन्तम्, भवन्तौ, भवतः द्वितीय। तो द्वितीय बहुवचन भवतः होता है। और चूंकि मैं आप सबों के प्रति इस पाठ को बता रही हूँ, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया भवतः प्रति, अर्थात द्वितीय का बहुवचन लगा करके। इसी प्रकार जो दूसरा शब्द है इत्यस्य कार्यक्रमस्य, यहाँ कार्यक्रम का नाम है पठामी संस्कृतम, जो दो शब्दों से बना है। जब इस प्रकार दो शब्द आ गए और हमें उसके आगे कोई विभक्ति का प्रत्यय लगाना है, तो हम क्या करते हैं कि उसके आगे पहले तो हम इति शब्द जोड़ देते हैं, फिर इति के आगे हम इदम शब्द का जो लिंग के हिसाब से और वचन के हिसाब से और विभक्ति के हिसाब से जो रूप बनेगा उसको जोड़ेंगे। जो विभक्ति का रूप लगाना है वो इदम के लिए लगेगा। तो यहाँ हमें षष्ठी का रूप चाहिए जो है अस्य, और उसे इति के साथ जोड़ने पर शब्द बना इत्यस्य। इसी प्रकार इत्यस्य ग्रंथस्य पातंजल योग सूत्राणि इत्यस्य ग्रंथस्य, तो वहाँ भी पातंजल योग सूत्राणि पुस्तक का नाम है, और उसके साथ इति लगाया और फिर अस्य, तो रूप हमने लिया इत्यस्य और आगे ग्रंथस्य। तो संस्कृत में इति शब्द का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जब कोई बहुत बड़ा शब्द हो या दो तीन शब्दों को मिल करके एक शब्द समुच्चय हो और उसमें हमें षष्ठी का रूप, द्वितीय का रूप इत्यादि लगाने पड़ते हैं, सप्तमी का रूप, तो वहाँ पर हम इति शब्द का सहारा लेकर के वह प्रत्यय लगाते हैं। ये थोड़ी सी व्याकरण की गहन बात हो गई, लेकिन अगर तुम्हें व्याकरण पढ़ने में आनंद आता है तो ये बहुत अच्छा लगेगा।
मुनि ही कथयति योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मुनि कहते हैं, योग की व्याख्या करते हैं कि योग क्या होता है, तो चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, तो चित्तस्य अर्थः भवति मन इति, वृत्ति शब्दस्य अर्थः भवति स्वभावः। तो चित्त का अर्थ हुआ मन और वृत्ति शब्द का अर्थ हुआ स्वभाव। पंच ज्ञानेन्द्रियैः सह मिलित्वा चित्तः भ्रमति, पांच ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर रहने से हमारा चित्त जो है वह भ्रमति अर्थात भटक जाता है। तेषां विषयान् अनुसरति, उन्हीं पांच इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं का अनुसरण हमारा चित्त करता है। यथा घ्राणस्य विषयः
गंधः,
जिह्वायाः विषयः
रसः,
श्रोत्रस्य विषयः
शब्दः,
तैः विषयैः सह
चित्तम् अनुरक्तं भवति।
तो यहाँ यह समझाया है कि चित्त जो है वह पंच ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिल करके वह भटक जाता है, उन्हीं के जो विषय हैं उसी का अनुसरण हमारा चित्त भी करता है। जैसे नाक का विषय है सुगंध, तो जहाँ कहीं से गंध आई तो चित्त उस गंध की तरफ आकर्षित हो जाता है या उसी के विषय में कार्यरत हो जाता है, उसी के विषय में मनुष्य सोचने लगता है। जिह्वा का विषय है स्वाद और श्रोत्र अर्थात कान का विषय है ध्वनि। तो इस प्रकार हमारे पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, जैसे त्वचा का विषय है स्पर्श और नेत्रों का विषय है दृश्य। तो तैः विषयैः सह, इन सारे विषयों के साथ
चित्तम् अनुरक्तं भवति,
चित्त जो है वह इन विषयों में अनुरक्त हो जाता है अर्थात चित्त की आसक्ति इन विषयों के प्रति हो जाती है। अनेन कारणेन परमेश्वरस्य विस्मरणं भवति, तो इसी कारण से हमारा चित्त जो है उसे परमेश्वर का विस्मरण हो जाता है। मनुष्यः योग समाधिं प्राप्तुं न शक्नोति, मनुष्य को इस चित्त के भटकाव के कारण योग समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतएव प्रथमं सूत्रं योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति उक्तम्, इसीलिए बिल्कुल पहले ही सूत्र में पतंजलि मुनि ने यह बता दिया कि इस चित्तवृत्ति का निरोध करना यही योग का लक्षण है, लक्ष्य है, साध्य है, जो भी कह लें। इसलिए इति उक्तम्, इसलिए पतंजलि मुनि ने पहले ही आरंभ में ही यह कह दिया कि चित्तवृत्ति का निरोध करें वही योग है। और मित्रों, अब जैसा कि हम हर सप्ताह करते आए हैं, कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम एक सुंदर सा श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। यह श्लोक इस प्रकार है, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, आवाहनं न जानामि न जानामि पूजार्चनं, पूजां कर्म न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात्। यह प्रभु के प्रति कहा गया है कि आवाहनं न जानामि, हे परमेश्वर मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आवाहन किस प्रकार किया जाता है, किन शब्दों में तुम्हें पुकारा जाता है ताकि तुम आ जाओ। न जानामि पूजार्चनम, और तुम्हारी पूजा या अर्चना कैसे की जाती है यह भी मुझे नहीं ज्ञात है। न जानामि, आगे पूजां कर्म न जानामि, पूजा की विधि भी मुझे नहीं ज्ञात है। क्षम्यताम परमेश्वर, इसलिए हे परमेश्वर तुम मुझे क्षमा करो क्योंकि मैं इन बातों में अज्ञानी हूँ। गतम पापम गतम दुखम, लेकिन अभी मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि मेरा पाप चला गया है। गतम, वह मेरे से दूर कहीं चला गया। गतम दुखम, मेरा दुख भी चला गया है। गतम दारिद्र्यमेव च, और मेरी दरिद्रता भी दूर हो गई है, चली गई है।
आगता
सुख संपत्ति ही, और मेरे पास सुख और संपत्ति आ गई है क्योंकि पुण्योहम तव दर्शनात्, क्योंकि मुझे तुम्हारा दर्शन मिल गया और उस दर्शन के पुण्य से मेरे सभी दुख पाप और दरिद्रता हट गए और मुझे सुख और संपत्ति की अनुभूति हो रही है। तो इस श्लोक में यही समझाया गया है कि अगर हमें पूजा का विधि विधान पता नहीं हो, अर्चना की सामग्री हमारे पास ना हो, आवाहन करने का तरीका हमें नहीं आता हो, फिर भी अगर मन में भक्ति है, भाव है और श्रद्धा है तो प्रभु के दर्शन हो ही जाते हैं। तो मित्रों, इस सुंदर से श्लोक के साथ हम आज का पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। लीना महेंद्रे को अनुमति दो। नमस्कार, तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो।